greet each and every one of you in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior.
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही सामर्थ्य नाम में हम आप सभी को अभिवादन करते हैं.
We are so happy that once again you can join us in this wonderful program of the Holy Land.
हम बहुत ही खुश हैं कि एक बार फिर से आप इस होली लैंड के अद्भुत प्रोग्राम में हमारे साथ में जुड़ पाए हैं.
And I'm sure the current issue and the current topic today is on the second coming.
और निश्चय मैं जानती हूँ कि आज का जो मुद्दा है वो तो बस दूसरे आगमन के बारे में ही चर्चा का मुद्दा है.
And that's exactly what we are doing today.
और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं.
Today you see there is a common talk everywhere that Jesus Christ is coming back very soon.
आज इस बात के बारे में आप देख सकते हैं कि हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है.
And this is commonly referred to as the second coming of our Lord Jesus Christ.
और इसे सामान्य रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तरह से कहा गया है.
Now this topic has also been discussed widely over the last 2000 years.
और पिछले 2000 साल में इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, इस पर बहुत सी बहस हो चुकी है.
When we say the second coming, there must be a first coming.
और जब हम कहते हैं कि दूसरा आगमन, तो इसका मतलब है कि निश्चय ही पहला आगमन होगा.
Now we read the first coming was told 1000 years before it happened.
हम ये भी पढ़ते हैं कि पहला जो आगमन है वो सच में होने के पहले, उसके पहले 1000 साल पहले उसके बारे में बताया गया.
In God's diary, 1000 years is like a day.
परमेश्वर की डायरी में मानो 1000 साल तो बस एक दिन के बराबर होती हैं.
If you read 2 Peter chapter 3 verse 8,
अगर आप दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8 पढ़ते हैं तो आप इस बात को पाएंगे.
It says,
ये इस तरह से कहता है,
But do not forget this one thing.
बस तुम इस एक बात को न भूलो.
Dear friends,
प्यारे दोस्तों,
With the Lord, a day is like 1000 years.
कि परमेश्वर के लिए एक दिन तो 1000 साल के जैसे हैं.
And 1000 years is like a day.
और 1000 साल तो परमेश्वर के लिए मानो बस एक दिन के जैसे हैं.
Remember, the birth of Jesus Christ was told 1500 years before he was born.
याद रखिए, यीशु मसीह के जन्म के पहले, यीशु मसीह के जन्म के बारे में लगभग 1500 साल पहले ही बता दिया गया था.
And you know who was that great prophet who prophesied?
और आप जानते हैं जिस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की वो महान भविष्यवक्ता कौन था?
That was the prophet Balaam.
और वो तो बिलाम भविष्यवक्ता था.
And he said, a star will come out of Jacob.
और उसने इस तरह से कहा कि याकूब में से एक तारा निकलेगा.
Numbers 24:17.
गिनती 24:17.
Prophet Micah prophesied the exact place of the birth of Jesus Christ.
मीका भविष्यवक्ता जो है वो तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बिल्कुल सही जगह के बारे में बताता है.
That is 600 years before he was born.
ये तो उसके जन्म के लगभग 600 साल पहले की बात है.
And that is very clearly recorded in Micah 5:2.
और मीका अध्याय 5 वचन 2 में इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा गया
the
है.
The wise men from Babylon who were searching for the star in astronomy were able to identify the star.
बेबीलोन से जो बुद्धिमान लोग आए थे, जो कि तारों को देखते हुए इन सारी बातों का अध्ययन करते आए थे, वो उस तारे को, खास तारे को भी पहचान पाए.
And they traveled 1500 miles to Bethlehem to worship the baby Messiah.
और उस बालक मसीहा की आराधना करने के लिए वो तो यरूशलेम में आए थे, लगभग 1500 मील की यात्रा तय करके आए थे.
Simeon and Anna the prophetess were waiting in the temple of Jerusalem for many years to receive the baby Jesus Christ.
और शिमियोन और हन्ना जो है वो तो यरूशलेम के उस भवन में कई साल तक राह देखते रहे कि वो बालक यीशु मसीह को देखे, और वो वहां पर कई साल तक इंतजार करते रहे.
And that is recorded by Luke chapter 2 verses 21 to 31.
लूका अध्याय 2 वचन 21 से लेकर वचन 31 तक इसके बारे में हमें यहां पर बताया गया है.
All these prophecies relate to the first coming of Jesus Christ.
और ये जो सारी भविष्यवाणी है, ये तो यीशु मसीह के आने के पहले आगमन के बारे में बताती है.
The birth of Jesus Christ, the timing, the exact place of his birth, all were foretold in great details.
यीशु मसीह का जन्म, उसके समय के बारे में और किस जगह पर उसका जन्म होगा, इसके बारे में बड़े विवरण से बताया गया था, पूरे जानकारी के साथ बताया गया.
And imagine 1000 years before he was born.
और कल्पना कीजिए कि ये तो उसके जन्म के लगभग 1000 साल पहले की बात है।
प्रॉफेट यशायाह हु लिव्ड 700 इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
यशायाह भविष्यवक्ता जो कि यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले इस पृथ्वी पर जीवित था, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है,
इवन प्रोफेसाइज द नेम ऑफ द चाइल्ड एंड द फूड दैट ही वुड ईट।
और यहाँ तक कि उसने उस बालक के नाम के बारे में भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी करके ये भी बताया कि वो कौन सा भोजन करेगा।
And that is found in Isaiah chapter 7 verses 14 and 15.
और ये पाया जाता है यशायाह अध्याय 7 वचन 14 और 15 में।
David who lived 1000 years before Jesus Christ prophesied about his death on the cross.
और दाऊद जो कि यीशु मसीह के लगभग 1000 साल पहले जीवित था, उसने क्रूस पर उसकी जो मृत्यु है उसके बारे में भविष्यवाणी करके बताया।
In such details that he told about the division of the garments of Jesus Christ by casting off lots in Psalm 22:18.
और भजन संहिता अध्याय 22 वचन 18 में उसने ये भी बहुत ही विवरण से बताया कि यीशु मसीह का जो वस्त्र है, जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो उस वस्त्र को पाने के लिए जो सिपाही है वो उस पर चिट्ठी डालेंगे और जिसका नाम आएगा वो उसे लेगा, ये भी विवरण दिया है।
At the time of his ministry,
और यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान उस समय यरूशलेम का जो भवन था वहां पर यहूदी जो आत्मिक अगवे थे वही उसकी देखभाल किया करते थे।
चीफ प्रीस्ट, सदूकीज, फरीसीज एंड अदर्स।
और वहां पर तो महायाजक था, सदूकी और फिर फरीसी और दूसरे लोग थे।
There were many scribes in the temple searching in detail about the Messiah's coming.
और भवन में ऐसे बहुत से शास्त्री थे जो आने वाले मसीहा के बारे में पूरे विवरण को अच्छे से देखते चले जा रहे थे।
And it was also studied in detail in the Old Testament.
और पुराने नियम में भी इस बात के बारे में पूरे विवरण के साथ में अध्ययन किया गया है।
You must remember how fanatic these people were. They very, very strictly followed the Torah.
आपको इस बात को समझना होगा कि ये लोग सच में कितने धार्मिक थे। वो तोरा को बहुत ही सटीकता से मानने वाले लोग थे।
They also followed the Mosaic laws very rigorously.
और वो मूसा की जो व्यवस्था थी उसका भी पूरी तरह से पालन किया करते थे।
Just to give you an example that they were so serious about the law.
और मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि वो तो व्यवस्था के पालन करने के बारे में बहुत ही गंभीर ऐसे लोग हुआ करते थे।
On a Sabbath day, they were not allowed to do any work.
सब्त के दिन उन्हें किसी तरह से कोई भी काम करने की अनुमति नहीं थी।
They were permitted to walk only 2000 steps, that is to for going to the temple.
और उन्हें केवल 2000 कदम चलने की अनुमति थी और वो भी केवल भवन में जाने के लिए उन्हें यह अनुमति दी गई थी।
At the time of Jesus, most Jewish people had complete knowledge of the Old Testament prophecies.
यीशु मसीह के जन्म के समय में ज्यादातर जो है यहूदी वो तो पुराने समय की भविष्यवाणी के बारे में पूरी तरह से जानते थे।
And they also knew that the Messiah was going to come.
और वो ये भी जानते थे कि मसीहा जो है वो तो आने वाला है।
In fact, the Messiah came and lived with them 30 years.
और सच में देखा जाए तो मसीहा आया और वो लगभग 30 साल तक उनके साथ में रहा।
But they failed to recognize him.
लेकिन वो उसे किसी भी तरह से नहीं पहचान पाए थे।
Finally, they've crucified him as per the prophecy.
और निश्चय जैसे भविष्यवाणी की गई थी उसी तरह से उन्होंने अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था।
Jesus Christ himself during his ministry,
और यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सेवकाई के दौरान हम इस बात को देखते हैं।
The Son of Man came to deliver the people from the bondage of their sins.
उसने ये भी कहा कि मनुष्य का पुत्र केवल इसीलिए आया है कि मनुष्यों को उनके पापों के बंधन से छुटकारा दे। और लू का जो है वो तो अध्याय 19 वचन 10 में इसके बारे में लिखता है।
To confirm his ministry, he did many miracles.
और अपनी सेवकाई को साबित करने के लिए यीशु ने बहुत से चमत्कार किए थे।
Which no man has done till today.
जिसे आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं किए हैं।
He told them very clearly he would be arrested, crucified and on the third day he would rise again.
और उसने उन्हें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया था कि उसे बंदी बनाया जाएगा, उसे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और वो मरेगा और फिर तीसरे दिन वो फिर से जी उठेगा, उसने बताया था।
Jesus told this not only to the people who followed him, but he told them to his own disciples on many occasions.
और यीशु ने अपने पीछे चलने वाले लोगों को ही ये नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने चेलों को भी कई बार इस बात के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया था।
Unfortunately, nobody did believe he was the Messiah who had come to the world.
दुर्भाग्यवश किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ये वही मसीहा है जो संसार में आने वाला था। और ये तो बिल्कुल भविष्यवाणी के अनुसार ही हुआ।
No one recognized him also.
और सच में देखा जाए तो किसी ने उसे पहचाना नहीं। और उसके खुद के चेले जिन्होंने ये सारी शिक्षा सुनी थी और साथ साथ में उसके किए हुए चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, लगभग 3.5 साल तक वो देखते रहे।
Also confirmed with their mouth that he was the son of God, the Messiah.
और एक बार तो उन्होंने अपने मुंह से इस बात को मान भी लिया था कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है।
But in the time of trouble, they all deserted him.
लेकिन परेशानी के समय वो सब उसे छोड़कर वहां से चले गए थे।
This happened in the Garden of Gethsemane when the soldiers came to arrest Jesus.
और ये तो सब वहां पर गतसमनी के बाग में हुआ जब सिपाही यीशु को बंदी बनाने के लिए वहां पर आए थे।
So called high priest and temple leaders,
और ये जो महायाजक और साथ साथ में भवन के जो अगवे थे वो सभी लोग,
remember these people who were thorough in the prophecies and the law,
याद है ये सभी लोग जो कि भविष्यवाणी और साथ साथ में व्यवस्था में माहिर थे,
they tortured him for the simple reason because he accepted that he was the son of God.
वो तो केवल इसी बात के लिए उसे वहां पर सता रहे थे क्योंकि उसने ये कहा था कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, केवल इसी बात के कारण उन्होंने उसे दंड दिया।
Remember, Jesus himself never declared he was the son of God before them.
याद रखिए कभी भी यीशु ने उनके सामने की ये घोषित नहीं किया कि वो परमेश्वर का पुत्र
है। He just answered yes.
उसने बस यही जवाब दिया था कि हाँ।
When the question was put forth to him by the high priest.
जब महायाजक ने उससे ये सवाल पूछा था तब उसने जवाब दिया।
He was the son of God.
उसने सवाल पूछा था कि क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो?
We read in the book of Mark, chapter 14, verses 61 to 62.
हम मरकुस अध्याय 14 वचन 61 और वचन 62 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
The governor, Pilate, during his inquiry and judgment, tried his level best to release Jesus Christ.
उस समय का गवर्नर जो पिलातुस था उसने हर तरह से कोशिश की कि यीशु का हर तरह से बचाव कर सके और यीशु मसीह को वो लोगों के हाथों से छुड़ा सके।
Pilate knew pretty well that Jesus Christ never did any harm or wrong to be punished.
पिलातुस इस बात को अच्छे से जानता था कि यीशु ने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसके कारण उसे दंड दिया जा सके।
But he had to give his verdict of capital punishment in those days, which was crucifixion to satisfy the Jewish temple leaders.
लेकिन उस समय यहूदी भवन के जो अगवे थे उन्हें खुश करने के लिए वहां पर उसने उसे मृत्युदंड दिया था और ये मृत्युदंड तो निश्चय उस समय के अनुसार क्रूसीकरण के द्वारा था।
These Jewish leaders never realized that they were crucifying the Messiah who was mentioned many times in the scriptures.
और ये यहूदी अगवे इस बात को नहीं जानते थे कि वो तो उसी मसीहा को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं जिसके बारे में वचन में कई बार लिखा है, कई जगह पर उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है।
If only Jesus Christ wanted to avoid the punishment of crucifixion.
अगर केवल प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रूसीकरण के इस दंड को टालना चाहते,
He could have vanished before the inquiry hall.
तो फिर वो वहां पर पूछताछ के हॉल से गायब हो सकते थे।
Or even before Pilate.
यहाँ तक कि पिलातुस के सामने से गायब हो सकते थे।
Simply obeyed God the Father.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी।
And fulfilled all the prophecies in Luke 24 verse 44.
और लूका अध्याय 24 वचन 44 में जो भी भविष्यवाणी है उन सारी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु ने पूरी तरह से पूरा किया।
He had to go through those pain and sufferings.
उसे इन सारे दर्द और इन सारी पीड़ा में से होकर जाना ही था, वो उसमें से होकर गया।
The Jewish people expected the Messiah to come as a great leader.
यहूदी लोग इस तरह से अपेक्षा कर रहे थे कि मसीहा जो है वो तो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में आएगा।
And deliver them from the Roman rule.
और वो उन्हें रोमी शासन के हाथ से छुटकारा देगा।
Now we come to the next point. It is true that the Messiah came for the first time as a very simple and a humble person.
अब हम अगले पॉइंट में आते हैं। ये बात सच है कि पहली बार जब मसीहा आया तो वो बहुत ही सरल और बहुत ही नम्र मनुष्य के रूप में आया।
And you all know that Jesus did his ministry for 3.5 years.
और आप सब इस बात को जानते हैं कि यीशु ने अपनी सेवकाई जो है वो तो 3.5 साल तक की।
And he died for our sins on the cross of Calvary.
और वो कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया।
And also he was resurrected on the third day.
और साथ ही वो तीसरे दिन फिर से जी भी उठा।
And we believe that he ascended into heaven and is sitting at the right hand of God the Father.
और हम ये विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग में उठाया गया है और इस समय वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है।
I hope by now you were understood about the first coming of the Messiah Jesus Christ.
और मैं आशा करती हूँ कि अब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
And that was about 2000 years earlier.
और ये भी लगभग 2000 साल पहले से बताया गया था.
Now you know that all the four gospels, that is Matthew, Mark and Luke and John, tell about his birth ministry.
और निश्चय ही हम जानते हैं कि चारों सुसमाचार यानी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना उसके जन्म और उसकी सेवकाई के बारे में हमें बताते हैं.
And remember also his death and resurrection.
और साथ में आप इस बात को याद रखें उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में.
All these gospels were written about 20 to 30 years after the resurrection of Jesus Christ.
और ये सारे सुसमाचार यीशु मसीह के जी उठने के लगभग 20 से 30 साल के दरमियान लिख दिए गए थे.
Of the four gospel writers,
और ये जो चार जो सुसमाचार के लेखक हैं,
Matthew and John were the disciples of Jesus Christ.
कि उनमें से मत्ती और यूहन्ना जो है ये तो यीशु मसीह के चेले थे.
Matthew wrote the gospel from Antioch.
और मत्ती ने अंताकिया से अपना सुसमाचार लिखा.
Almost 30 years after the resurrection of Jesus Christ.
और ये तो यीशु मसीह के जी उठने के लगभग 30 साल के बाद उसने लिखा.
The writer John wrote the last gospel 40 years. After the resurrection of Jesus Christ.
और यूहन्ना जो कि चेला था उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लगभग 40 साल के बाद में अपना सुसमाचार लिखा.
At that time he was in the island of Patmos.
और उस समय वो तो पतमोस के टापू के ऊपर में एक बंदी व्यक्ति था.
We also have to thank God for the two important people.
हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए इन दो महत्वपूर्ण लोगों के लिए.
One is Luke and the other is Paul.
एक है लूका और दूसरा है पौलुस.
लूक एंड पॉल आफ्टर द रेजरेक्शन रोट मेनी मोर डिटेल्स.
लूका और पौलुस ने यीशु के पुनरुत्थान के बाद में बहुत सी पत्रियां लिखी, उसने बहुत सी किताबें लिखी.
टुडे आई वांट टू जस्ट रिमाइंड यू अबाउट अ फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट लूक. ही वाज अ वेरी लवेबल कैरेक्टर एंड एट द सेम टाइम ही वाज अ मेडिकल डॉक्टर.
और मैं आपको आज लूका के बारे में बताना चाहती हूँ. वो तो सच में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और साथ साथ में वो तो एक मेडिकल डॉक्टर था.
I do not think that Luke witnesses the ministry of Jesus Christ personally.
और मैं नहीं सोचती कि लूका ने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को अपनी आंखों से देखा.
Probably he was well educated. Well, of course, he was a doctor. He could be well educated doing his medical practice.
शायद हो सकता है क्योंकि वो तो अच्छा पढ़ा लिखा था और वो उस समय वहाँ पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस किया करता था.
Catering to the people belonging to the high society of the days. That means catering to the people who were educated.
वो तो उस समय के समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो धनी लोग थे, केवल उन्हीं का उपचार किया करता था.
You should know that he was compelled to write the two books. One is the Gospel of Luke and other the Acts of the Apostle.
आपको ये याद रखना होगा कि उसने दो किताबें लिखी हैं, उनमें से एक है लूका का सुसमाचार और दूसरी किताब जो है वो तो है प्रेरितों के काम की किताब.
Now if you remember the Bible correctly, the introduction of Luke itself says he was writing it for Theophilus to understand the
और
gospel.
अगर आप इस सुसमाचार के इसके बारे में देखें तो यहाँ पर वो स्पष्ट रीति से लिखता है, वो इसलिए लिखता है कि थियोफिलस जो है वो तो सुसमाचार की बातों को समझ सके, वो उसे समझा कर बताता है.
Now we see that Luke was writing all these to submit this report to his boss Theophilus, who held a very high office in the Jewish community.
और हम इस बात को देखते हैं कि लूका ये सारी बातें, ये सारा रिपोर्ट जो है इसलिए लिख रहा था कि अपने अधिकारी जो कि थियोफिलस है, जो कि वहाँ पर उस समय बहुत ही बड़ा अधिकारी था, उसे ये सब कुछ सौंप सके.
That is in Luke 1:3.
लूका 1:3 में हम इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं.
Luke would have taken great pains as he was an educated man and he was a doctor and he wanted people to understand the gospel.
लूका जो कि एक डॉक्टर था, उसने यहाँ पर बड़ा परिश्रम किया होगा कि सुसमाचार की जो बातें हैं उसके बारे में बहुत ही सटीकता से लिखे ताकि सभी लोग इस बात को समझ सके.
That is why he says in verse 11.
और इसलिए वचन 11 में वो इस तरह से कहता है.
This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven.
ये यीशु जो तुम्हारे सामने से उठा लिया गया, जिस रीति से वो उठा लिया गया, बिल्कुल उसी रीति से वो स्वर्ग से वापस आएगा.
Now that comes to the point of the second coming of Jesus Christ.
और यहीं पर तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मुद्दा आता है. हम यहाँ पर दूसरा आगमन देख सकते हैं.
As I told you earlier, the first coming of the Messiah was told many times through different prophecies and different prophets.
और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पहला आगमन है उसके बारे में बहुत साल पहले, हजारों साल पहले अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अलग अलग भविष्यवाणियों के द्वारा उसके बारे में पहले से ही बता दिया गया था।
But listen carefully to what happened. But when he came, nobody recognized or believed him.
लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब वो आया तो किसी ने उसे नहीं पहचाना, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया।
They finally crucified him.
और आखिर में उन्होंने इसे क्रूस पर चढ़ा दिया।
The first coming of Jesus Christ took place in a very simple manner.
और यीशु मसीह का जो पहला आगमन है ये तो बहुत ही सरल तरीके से सामान्य रूप में हुआ।
But the second coming of Jesus Christ will not be like his first coming.
लेकिन यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो तो बिल्कुल उसके पहले आगमन के जैसे नहीं होगा।
But this time he will come around to judge the people.
लेकिन इस समय जब वो आएगा ये तो लोगों का न्याय करने के लिए आएगा, वो न्यायाधीश होकर आएगा।
Yes, Jesus Christ is returning to the earth to judge the wicked and bring deliverance to the people.
हाँ, यीशु मसीह संसार में आ रहा है कि दुष्टों का वो न्याय करे और जो बुरे लोग हैं उनका न्याय करे और उन सभी लोगों को उनके कामों का प्रतिफल देते जाए।
Let's see a few important things the gospel writers write about the second coming.
आइए दूसरे आगमन के बारे में सुसमाचार का जो लेखक है वो किस तरह से लिखता है, आइए इस बात को हम देख लेते हैं।
Matthew, the tax collector who was with Jesus Christ till the cross, writes in Matthew chapter 24.
और मत्ती जो कि यीशु मसीह के साथ में वहाँ पर क्रूस के समय तक था, मत्ती अध्याय 24 में वो इन सारी बातों के बारे में इस तरह से लिखता है, हम इसे देख सकते हैं।
A few important things about the second coming.
और वो तो यहाँ पर दूसरे आगमन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें बताता है।
Here we see that Jesus Christ many times used to go to the Mount of Olives to pray.
हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रार्थना करने के लिए जैतून के पहाड़ पर जाता था।
From the Mount Olives, you could clearly see Jerusalem.
और जैतून के पहाड़ से आप पूरी रीति से यरूशलेम को देख सकते हैं।
Matthew writes in verse 3.
मत्ती अध्याय 3 में इस तरह से हमें लिखकर बताता है।
As he sat on the Mount of Olives, the disciples came unto him privately.
और जैसे वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उस समय चेले उसके पास में आए।
Saying,
और उन्होंने उससे कहा,
Telling us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?
कि ये जो सारी बातें हैं, इसका चिन्ह क्या है? ये सब कब होगा और संसार का, जगत का अंत कब आएगा?
Then Jesus explains to them in detail and gives them these signs.
और फिर यीशु ने विवरण के साथ में बताते हुए इन सारे चिन्हों के बारे में बताता है।
नंबर एक. He tells them, take heed that no man deceive you.
और वो कहता है कि तुम सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए।
For many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many.
क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि मैं ही मसीहा हूँ, और वो बहुत से लोगों को भरमा देंगे।
नंबर दो. Then he tells them, you shall hear of wars.
और फिर वो उनसे ये कहता है कि तुम युद्धों के बारे में सुनोगे।
And you will hear of rumors of wars.
और तुम युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनते चले जाओगे।
See that you are not troubled.
तो उस समय सावधान रहना, तुम व्याकुल न हो।
For all these things must come to pass, but the end is not yet.
इन सारी बातों का होना जरूरी, लेकिन अंत अब तक नहीं आया है।
This is just the beginning of sorrows.
और ये तो केवल दुखों की शुरुआत ही होगी, इस तरह से वो कहता है।
नंबर 3.
और फिर नंबर 3.
Then Jesus warns of the affliction.
और फिर यीशु जो क्लेश होने वाला उसके बारे में बताता है।
Then shall they deliver you up to be afflicted.
और फिर वो तुम्हें सताने के लिए पकड़ेंगे और तुम्हें सौंप देंगे।
And kill you.
और वो तो तुम्हारी हत्या करेंगे।
And you shall be hated of all nations for my name's sake.
और मेरे नाम के लिए सभी देश के जो लोग हैं वो तुमसे नफरत करते चले जाएंगे।
And then many shall be offended.
और फिर बहुत से लोग ठोकर खाएंगे।
And shall betray one another and hate one another.
वो तो एक दूसरे से नफरत करेंगे, वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे।
नंबर 4.
और फिर नंबर 4.
Then Jesus warns of many false prophets who will come and deceive many.
और फिर यीशु बहुत से झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताता है जो कि आकर बहुत से लोगों को भरमाएंगे।
नंबर 5.
और फिर नंबर 5.
Then Jesus tells them his gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations.
और फिर यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सभी लोगों को प्रचार किया जाएगा कि सभी देशों के विरुद्ध में ये गवाही हो।
And then shall the end come.
और फिर अंत आ जाएगा।
And the last point, number 6.
और फिर आखिरी पॉइंट या नंबर 6.
Then Jesus warns the disciples at the end time they will see the abomination of
desolation. फिर यीशु वहां पर अपने चेलों को बताता है कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि उजाड़ने वाली वो जो घृणित वस्तु है वो वहां पर होगी.
And this was also prophesied by Daniel.
और इसके बारे में दानियल ने भविष्यवाणी करके रखी है.
Then Jesus tells them how quick these things will take place, and he warns them that they will be in Judea. Those that are in Judea will flee to the mountains.
और यहाँ पर यीशु उन्हें चेतावनी देता है कि ये सारी बातें बहुत ही जल्दी होंगी और वो उनसे कहता है कि तुम यहूदा में रहना और फिर पहाड़ों पर चले जाना.
Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house.
और जो अपनी छत पर है वो अपने घर से कुछ भी लेने के लिए छत से उतरकर नीचे न आए.
Let him which is in the field not come back to take back his clothes.
और जो खेत में है वो अपने कपड़े लेने के लिए भी खेत से वापस अपने घर में न आए.
And woe unto them with child.
और जो बच्चे जन्ने वाली है उन पर हाय, उसने कहा.
And those that give suck in those days.
और उन दिनों में जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाएगी.
But pray ye that your flight will be not in winter, neither on the Sabbath day.
और वो कहता है कि बस यही प्रार्थना करो कि ये सर्दियों में ना हो और ना ही ये किसी सब्त के दिन में हो.
Remember, on the Sabbath day, they could do no work.
याद रखिए सब्त के दिन वो किसी तरह से कोई काम नहीं कर सकते.
And Jesus tells them, for then shall the great tribulation such as was not since the beginning of the world.
और फिर यीशु उनसे कहता है कि ऐसा महाक्लेश होगा और ऐसा महायुद्ध होगा जो कि संसार के शुरू से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ. ऐसा क्लेश और ऐसा महायुद्ध होगा.
Unlike the first coming, Jesus is coming again to judge his people.
और देखिए यहाँ पर पहले आगमन के जैसे नहीं, लेकिन दूसरी बार यीशु मसीह अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा.
Though all these things are happening one by one.
और हालांकि ये सारी जो बातें एक एक करके होती जा रही हैं.
No one can predict the date, exact date or time of his second coming.
कोई भी उसके दूसरे आगमन के बारे में खास तारीख या कोई निश्चित समय के बारे में नहीं बता सकता है.
Though many say, we read Christ himself says in verse 36.
और कई बार लोग ये कहते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन 36 में कहा है.
But of that day and hour knoweth no man.
और उस दिन के बारे में, उस समय के बारे में कोई मनुष्य नहीं जानता.
Not even the angels of heaven.
और यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं.
But my father only.
लेकिन केवल मेरा पिता जानता है.
Please note that Jesus Christ not only told his disciples that day, but it is also relevant for us all today.
और इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह ने उस दिन केवल ये अपने चेलों को नहीं बताया, लेकिन हर एक समय ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही व्यवहारिक है.
Next week I will give you more details about the second coming of Jesus Christ.
और अगले हफ्ते यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मैं आपको और भी ज्यादा विवरण से बताऊंगी.
I really hope and pray that each of you will be stir your spirits up to inquire into this matter of second coming, which is the current issue in our lives as children of God.
और निश्चय मैं इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और अपने अंदर में इस सारे बातों के बारे में वो पूरी तरह से जागरूक हो जाए.
We should not be lethargic. At this point, we should be sharpened because we have been warned.
हमें यहाँ पर आलस नहीं दिखाना है. इस समय हमें चेतावनी दे दी गई है, इसलिए हमें पूरी तरह सचेत रहना है.
Not only ourselves, but we prepare our families also.
हमें केवल खुद ही नहीं लेकिन अपने परिवार को भी इसके लिए तैयार करके रखना है.
May God bless each and every one again till we meet next week.
अगली बार अगले हफ्ते मुलाकात होने तक परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे.
על יום שמאיר, הללויה, על מה שהיה, ומה שעוד לא היה.